याद रखिए कि जितना जिसके बारे में जानते जाएंगे उतना फायदा होगा। अल्लाह ताला सूरत अल आराफ 180 में फरमाते हैं, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं। दुनिया में भी तो जो अच्छे काम करें हम उसको अच्छे अच्छे नाम देते हैं ना। कहा फदूहू बिहा, उसको उन नामों के साथ पुकारा करो। किसी और को ना अल्लाह के नाम दो, यानी अल्लाह के नाम अल्लाह को दो और उसको उन नामों से पुकारो। यानी अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है उसको या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या वदूद, या कहार कहा जाए। ऐसी बड़ी प्यारी तिलावतें भी हैं और दुआएं हैं ऐसी ऐसी कि दिल हिल जाता है। तो अल्लाह को पुकारा करें जब बख्शिश मांगनी हो, या गफ्फार इग़फ़िरली, या गफ्फार इग़फ़िरली, या गफ्फार, ए बख्शने वाले मुझे बख्श दे। जब रिस्क मांगे, या रज़ाक और रज़ुकनी, मुझे रिस्क दे। जो चीज़ मांगे, अब ये जब आपको नाम आते होंगे तो फिर ही मांगेंगे ना, किताब से देखकर तो वो बात नहीं बनती। फिर अल्लाह फरमाते हैं, वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही, और छोड़ दो उन लोगों को जो अल्लाह के नामों में कजरवी करते हैं। मक्का वाले क्या करते थे? लफ्ज़ अल्लाह, कितना प्यारा नाम है, इसकी मिसेज बना ली थी लात, एक देवी का नाम लात रख दिया। अल्लाह सुब्हान तआला का नाम है अलमन्नान, थोड़े से फ़र्क से, तो उन्होंने क्या रखा? मनात, फीमेल, नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की मिसेज, उज़्ज़ा, अल-अज़ीज़ की मिसेज। अल्लाह ताला कहते हैं ये सब मेरे नामों में टेर डाल रहे हैं। सयुज़ज़ौना मा कानू यामलून, अनकरीब बदला पा लेंगे उसका जो वो करते हैं। और जो रिवायत है बुखारी और मुस्लिम में कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, और साथ कहा एक कम 100, यानी ताकीद करके, और जिसने इनको शुमार किया वो जन्नत में दाखिल होगा। जिसने इनको याद किया, इनके मानी मफहूम पे गौर किया, इसके ज़रिए से अल्लाह की हमदो सना की, इसके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ की, और उसका अकीदा रखा कि मेरा रब ऐसा ही है, वो जन्नत में दाखिल होगा। अब देखिए कि जन्नत में सिर्फ मोमिन दाखिल होंगे ना, ये तो आप और मैं भी जानते हैं। तो पता चला कि ईमान के हसूल और उसकी कुव्वत और मजबूती का सबसे अजीम सरचश्मा अस्माउल हुस्ना है, इसकी मार्फत है और इसके दर्जे हैं। चलिए आप लोग इस छोटे से सेशन में कम अज़ कम अपने लिए ये स्टेप्स रखिए। नंबर एक, इनको याद करें। कितने लोग हैं जिनके दिल में ये शौक़ उभर रहा है कि हमने ये नाम याद करने हैं। फिर इसी तरह से दूसरी चीज़, इसके मानी और मफहूम को देखना। अभी हमने सिर्फ मतलब जाने हैं तो अल्लाह से प्यार लग रहा है ना, तो जब इसके मानी और उसका मफहूम थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे तो फिर बहुत समझ आएगा। तो नियत कीजिए कि इंशाल्लाह हमने ये फुल सेशन अटेंड करने हैं, ताकि हम इसमें से अपने लिए कोई अमल की नुक्ते भी लें और हमारे ईमान को ग़ज़ा भी मिले, हम कुदरती तौर पे इसको हासिल करें। तीसरा दर्जा है इसके ज़रिए से दुआ करना। सना, इबादत, दुआ, सवाल, ये सब कुछ है। जब आप और मैं ये करेंगे ना तो फ़ायदा होगा। फिर थोड़ा सा अस्माउल हुस्ना को एक बांट के साथ समझते हैं। अच्छा, लफ्ज़ कहता है अल अस्मा अल हुस्ना। अगर आप कहेंगे ना अस्माउल हुस्ना, तो मतलब क्या होगा पता? हुस्ना के नाम, ये ठीक नाम नहीं है। अल अस्माउल हुस्ना मुरक्कबे तौसीफी है, अच्छे अच्छे नाम, ठीक है। बहुत कहना हो तो ये कह सकते हैं अस्माए हुस्ना, लेकिन दोनों में से एक के साथ अल नहीं लगा सकते, दोनों में लगाना है या दोनों में नहीं। अस्माए हुस्ना या अल अस्माउल हुस्ना, इतना बड़ा इल्म क्यों है? तो जवाब लिखिए, इसमें तौहीद की तीन बड़ी किस्में समा जाती हैं। आज असल में आप अकीदा नहीं, आप अल्लाह के नामों के ज़रिए तौहीद और अकीदा भी सीख रहे हैं। कौन सी तीन बड़ी किस्में? नंबर एक, तौहीद रबूबियत, रब होना अल्लाह का। तौहीद अलूहियत, अल्लाह का इलाह होना। और तौहीद अस्माउ सिफात, वो तो पूरी है ही अल्लाह के नामों पे। और ये तीनों किस्में ईमान की रूह, असास और बुनियाद और असल मकसूद है। जितना अस्माउ सिफात की मार्फत एक इंसान को ज़्यादा होगी, उतना उसका ईमान बढ़ेगा, उसके यकीन में पुख्तगी आएगी और अल्लाह ताला को पहचानेगा। तो आप कह लीजिए कि तौहीद का इल्म तो वो इल्म है जो शैतान के ऊपर बड़ा बोझल है, बड़ा भारी लगता है। और याद रखिए कि अल्लाह ताला के नाम वही हैं जो हैं, ना इसकी तहरीफ की जा सकती है, ना तावील, ना कैफियत बयान। बस आप देखिए, अब अल्लाह का नाम है अस्समी, हमने उर्दू में पढ़ लिया सुनने वाला। आप क्या, मैं और आप ऐसे सोचेंगे, अच्छा सुनने का अमल तो कान से होता है और हमारे दो कान हैं और बाहर से ऐसे हैं और अंदर कैविटी होती है और उसके अंदर नहीं, ला तावील, ला तहरीफ, ला उसकी कैफियत, बात समझ गए? सुनता है पर वो कैसे सुनता है, वो क्या ऑप्टिकल है, वो क्या है? चले अल्लाह देखता है तो क्या हमारी तरह उसकी आंखें हैं या ग्लासेस हैं, फिर उसमें एक वाइट हिस्सा है, एक ब्लैक है? नहीं, बस सुनिए और छोड़ दीजिए। जैसे आज भी देखिए, कैमरा भी तो देखता है, तो उसकी कोई आंख थोड़ी है। लोगों ने एक पुर्जा बना लिया, वो देखने लग गया, तो अल्लाह के नामों के बारे में ये अहम बात है कि इनको पढ़ने सुनने के बाद अल्लाह ताला का कोई हैवला या अल्लाह ताला की कोई शिबी नहीं बनानी दिमाग में। अल्लाह नूर समावाती वाल अर्थ। हज़रत आयशा ने एक मौके पर अल्लाह के नबी से पूछा, तो अल्लाह के नबी, क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो आयशा, क्या बात करती हो, वो तो नूर है, वो तो रोशनी, उसको कौन देखे? क्या आप और मैं सूरज को देख सकते हैं? बहुत खिला हुआ सूरज हो तो उसकी तरफ नज़र ठहरती है। तो बताइए, वो सूरज जिसको मुनव्वर करने वाली ज़ात है, नूर है, उसको कौन देख सकता है? आज मेरी आपकी आंखों में कदाकत नहीं अल्लाह को देखने की। और यहाँ ये भी बात नोट कीजिए कि अल्लाह को खुली आंखों से कोई नहीं देख सकता, अल्लाह के नबी तक ने नहीं देखा, ख्वाब में देखा है, और दुनिया में नहीं देख सकता कोई। हाँ, कब देखेगा, कहाँ देखेंगे? जन्नत में जाके देखेंगे। अल्लाह सुबहान तआला ईमान वालों को जन्नत में जाने से पहले कुछ ऐसे मराहल से गुजारेंगे कि उनकी आंखों में वो ताकत पैदा हो जाएगी कि वजू हुई यौम इज़िन नाज़िरा, वजू हुई यौम इज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा। कुछ चेहरे उस दिन बड़े खिले खिले होंगे क्योंकि वो अपने रब को देख रहे होंगे, तो लिहाजा वहाँ देखेंगे। और अगला काम अपने लिए लिख लें कि आज से ये दुआ करनी है कि अल्लाह हम तुझे देखें, तेरा दीदार मिले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खश्यतक फिल गैबी वल हाजिरा। इसी में एक दुआ आती है कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और हज़रत मूसा ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया था कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा कि सदाए लन तरानी सुन के चुप हूँ। अल्लाह ने मूसा को कह दिया था ना कि लन तरानी, यू नेवर सी मी। अल्लामा इकबाल कहते हैं, सिर्फ इस बात से मैं भी चुप हूँ, कहाँ मेरे जैसे गुनाहगार में ये जरूरत है कि मैं कहूँ अल्लाह मुझे दिखा, तूने तो कलीम को अपना अपनी दिखाया। तो अल्लाह ताला को आज नहीं देख सकते, फिर क्या करें? उसकी किताब को देखें, उसके रस्तों को देखें, उसके इल्म को हासिल करें। और याद रखिए कि अल्लाह ताला के नामों के बारे में एग्जेजुरेशन बहुत हुआ हिस्ट्री में। मैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ जो शायद कम ही चीज़ें पहले से हमने सुनी होती हैं। वो क्या है, माजी में बहुत सारे ऐसे गिरोह गुजरे हैं जो अल्लाह सुबहाना तआला की असमाओ सिफात और अफाल को इधर उधर करने की वजह से दीन से निकल गए। मसलन आप देखिए, आपने लफ्ज़ जहमिया सुना होगा, जहमिया फ़िरका था। इनके अल्लाह ताला की मोहब्बत के बारे में कितने रुकावटें थी, हलाक शुदा तबकों के बारे में, यानी जैसे नारी गिरोह जो फिरके गुजरे हैं ना, जैसे आपने ख्वारिज का नाम सुना होगा, खारे जायस, जहमिया हैं, और इसी तरह से मोतज़िला हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम इनके बारे में पढ़ा और सुना, एक क्लास में पढ़ा था, उस दिन मुझे आज अपनी उम्मत में फैली हुई इस बेदीनी की समझ आई थी। शिर्क में बड़े हुए, बिदात में बड़े हुए, कभी हुब्बे नबी में बड़े हुए, कभी हुब्बे अली में बड़े हुए, और अमल से दूर और बहसें करने वाले लोग थे। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐसे निकले होंगे इस्लाम में से जैसे आटे में से बाल निकलता। तो याद रखिए कि ये लूम लेने चाहिए, कितने अफसोस की बात है। सबसे ज्यादा जिस हस्ती को हम पुकारते हैं दिन में, कभी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का नाम तो ईमान वाले की गुत्थी में लगा हुआ है। अल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुबह उठते कुछ खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ, सुभान अल्लाह, अपना गुनाह याद आ गया, अस्तगफिरुल्लाह, कोई किसी चीज़ से पनाह में आना, आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आप और मैं अल्लाह के लफ्ज़ से अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते। दुनिया में एक इंसान आता है, माँ बाप का मोहताज होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी मोहताजी घटती जाती है, और एक दिन आता है कि माँ बाप के बगैर भी जी जाता है। लेकिन अल्लाह के लिए मैं और आप, अल्लाह के आगे हम इतने मजबूर और इतने बेबस, जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन थे, उतने ही आ जाए। हम तो इस दुनिया से अपनी जान के निकलने के लिए भी अल्लाह के मोहताज हैं। वह नाजियाती गर्का, वह नाशिताती नाश्ता, अगर अल्लाह ना चाहे तो हमारी तो जान भी ना निकले, एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए। अलमुमीत है वो, अगर वो मौत देता है। अब ये नाम भी नहीं है, ये मैंने अभी बोला, अभी लिस्ट में नहीं लिखाया आपको, लेकिन याद रखिए कि लम्हा लम्हा, एक एक मिनट में एक इंसान अल्लाह ताला का मोहताज है, और उसकी खूबियों और उसकी सिफात को के ऊपर गौर व फिक्र करना इंसान को अल्लाह के करीब करने में मददगार साबित का होता है। फिर दूसरी बात ये, एक और चीज़ अलअस्माउल हुस्ना के बारे में नोट कर लीजिए, और वो क्या है कि क्या अहादीस, यानी नबी सल्लम की हदीस भी कोई इसका सोर्स है, यानी कुरान से तो मिलते हैं, ठीक है, तो क्या नबी सल्लम की अहादीस से भी कुछ हमें इसके बारे में पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है। बहुत सारे नाम तो अल्लाह के नबी की दुआओं से आपको मिलते हैं। आप पढ़ते हैं, आप देखिए, हर दुआ, तहज्जुद की दुआ रात को पढ़े, अल्लाहुम्मा अंत नूर समावाती वल अर्ज़, और एक दुआ है जिसमें पूरे अस्माउल हुस्ना है, انت الحق و جنت کا حق و نار کا حق و لقاؤ کا حق. تو اللہ کے بہت سارے نام ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتے ہیں. تو جتنی آپ اور میں حدیث سے زیادہ قربت حاصل کریں گے اتنا زیادہ آپ دیکھیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلقات بھی پہنچے گا. پھر اس کے بعد ایک اور اہم سوال لکھیے, کیا نفس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود جس کو قرآن البینہ کہتا ہے, کیا اس سے بھی ہمیں کچھ اللہ کے ناموں کی معرفت ملتی ہے؟ تو لکھیے گا جواب اس کا. دیکھیے نفس صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے, انک لعلی خلق عظیم. آیت ہے سورۃ قلم کی, بہت ساری اس کی تفسیریں ہیں, اس کو ایک سائڈ پہ کر کے اس وقت موضوع کو سمجھیے. جس طرح اللہ کی ذات آئیڈیل ہے نا, اس نے اپنا ایک معیار بنایا ہے, اس نے انسانوں میں بھی ایک رول ماڈل یا ایک آئیڈیل دینا تھا, بات سمجھ رہے, جس میں اخلاق کی ہر خوبی ہو, جس میں ہر اللہ کے نام کی جھلک ہو, تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنے اور جاننے اور ان کی شریعت کو, ان کی عادات کو دیکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے. پھر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے سارے نام صرف ہم انسانوں سے متعلق ہیں؟ باقی مخلوقات کے لیے بھی اللہ کے ناموں کی کوئی اہمیت ہے؟ سوال سمجھے. مثلا جنات ہیں, پرندے ہیں, جانور ہیں, کیٹلز ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تو سب کا ہے, جانداروں کا بھی ہے, بے جان کا بھی ہے, خیر کا بھی رب ہے, وہ شر کا بھی رب ہے, انسانوں کا بھی ہے, جنوں کا بھی ہے, شیطانوں کا بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے قربت ذی شعور ہستی کر سکتی ہے. رہ گئے پہاڑ, دریا, سمندر, اللہ نے ان میں انگریو کر دی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بلٹ ان ہے, اندر ڈال دی. پہاڑ اللہ کے آگے جھکے ہوئے, زمین جھکی بھی ہے, سورج چاند اپنی اللہ نے جو کہہ دیا گھوم رہے ہیں. اللہ نے اپنی معرفت ان بے جان مخلوقات کے اندر ڈال دی ہے. مجھے آپ کو اپنے اندر خود ڈالنی ہے اللہ کی مدد سے. نہ میں اور آپ بے نیاز رہ سکتے ہیں اللہ سے, اور نہ یہ جاندار اور بے جان دوسری مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہ سکتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے کہ جب ایک انسان اللہ کی باتیں کرتا ہے نا, اس وقت تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے میٹھی چیز ہی ہے. یعنی شاید آپ میں سے کسی کو لگ رہا ہو کہ اس سے خوبصورت ٹاپک کوئی نہیں تھا جس سے ہم بات کریں, لیکن جو لوگ اس کے بارے میں سنتے نہیں, بات نہیں کرتے, ان کو یہ کچھ بھی نہیں لگتا. یعنی کافر کو اس نام سے کوئی اٹریکشن نہیں ہے, یہ تو بہت ہی بوجھل چیز ہے, یہ تو بہت بڑی چیز ہے. ورنہ آپ دیکھیے لوگ کبھی ایتھیسٹ نہ ہوتے, کبھی دہریے دنیا میں نہ ہوتے. پھر اسی طرح ایک اور بہت پیاری بات آپ کو نوٹ کرانے لگی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ کیا اسماءُل حسنیٰ پہ غور و فکر سے ہماری عبادات پہ کوئی اثر پڑے گا؟ تو اس کا جواب تو حدیث جبریل میں ہے, جنہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں سکھائی تھیں, مال اسلام, مال ایمان. تو جب اس میں پوچھا تھا کہ عبادت کیسے کرو تو کیا کہا, کان کا طرح ہو, کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایسے پڑھوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. کہا اچھا ایسے نہیں پڑھ سکتے, تو پھر یہ کہہ دو کہ گویا کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ احسان کا درجہ ہے. تو لکھیے, بڑی پیاری بات ہے, دن میں 5 بار کم از کم فرض نمازوں میں آپ اس علم کو پانے کے بعد لذت محسوس کریں گے. بار بار دھیان جائے گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یعنی جب آپ دن میں 5 بار یہ فیلنگ لے کے اٹھیں گے نا کہ اللہ کو میں دیکھ رہی ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کیا آپ اکیلے ہوں گے؟ پھر تنہائی تنہائی نہیں رہتی, شہنائی بن جاتی ہے. پھر آپ کے غم غم نہیں ہیں, خوشیوں میں آتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ عبادت کی لذت پاتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ ایک وہ ہے جس کی تہجد چھٹ جائے تو اگلے دن روتا ہے, اور ایک وہ ہے جو فجر پڑھ لے تو بڑی بڑی بات ہے, جی آج فجر پڑھ لی تھی. فرق کس کا ہے؟ اس معرفت کا فرق ہے. تو لہٰذا آپ کو عبادت میں حسن ملے گا. اب ایک اور چیز, شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کا بھی وہ ہم اور غم نہ بناؤ, لیکن خوشی سے کہوں گی اور بہت سارے دنیا میں آج ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے, دعوت اللہ, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. ہم میں سے ہر ایک ہی کہیں نہ کہیں تو دعوت دیتا ہی ہے, کال سے یا فیل سے. اور کن تم خیر امت اخرجت للناس کے ناطے امت کا فرض بھی ہے, یہ امت دعویٰ ہے. ہم امت وہ ہیں جو دوسروں کو دعوت دینے والی ہیں, ہم مدعو بھی ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو کیا اسماءُل حسنیٰ پہ غور و فکر کے بعد آپ کی دین کی دعوت میں بھی کوئی رنگ آتا ہے؟ تو میں اس کے اوپر آپ کے سامنے سورۃ الاسر پڑھ دیتی ہوں. والاسر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دین کی دعوت دینا حق اور صبر کی وصیت کرنا ہے, مشکلوں کا کام ہے. ایک بندہ جب اسماءُل حسنیٰ پہ غور کر لیتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق جوڑتا ہے نا, इस रास्ते की बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानियों में बदल जाती है। इस रास्ते में आने वाली तकलीफें एजाज लगती हैं, ऑनर लगती हैं। मसलन मिसाल देती हूँ, आपके घर आपका बड़ा ही अजीज मेहमान आ गया जिसके लिए दिल जान निछावर करने को दिल करता है, और आप सुबह उठ के भी काम करते हैं, दोपहर रात सोने तक उसकी जो खिदमत खातर जिस तरह से भी करें करते हैं, वो आपसे क्या कहता है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मैंने आपको इतना मसरूफ कर दिया, मेरी वजह से आप बिजी हो गए, कहता है ना वो। आगे से आपका क्या जवाब होता है? उर्दू में कहेंगे ये हमारी इज्जत है, ये ऑनर है। जब जिससे मोहब्बत होती है ना उसके लिए कोई तकलीफ सहनी पड़े तो हमें ऑनर लगता है ना। अल्लाह के रास्ते की दावत, दीन के लिए ये भाग दौड़, थोड़ा सा इधर से उधर, उधर से उधर, और कुछ जागना और कुछ पढ़ना करना, ये एक ऑनर लगने लग जाता है जब अल अस्माउल हुस्ना पे गौर व फिक्र हो जाता है। यकीन ही नहीं आता कि अल्लाह तेरे रास्ते में, मैं बस इससे आगे तो जुमला ही नहीं पूरा होता, रोना ही नहीं छूटेगा आपका। अल्लाह तूने चुना मुझको, चले रोना शुरू कर दे। अल्लाह तूने कदम जमाए, रो लो। यानी कोई कोई दुनिया की लैंग्वेज, कोई डिक्शनरी आपको इन सवालों का जवाब देने पे तैयार नहीं करती। चले आपके इस मुल्क का सदर आपके घर कल खाने पे आ जाए और आप उसके लिए पका पका के पागल हो रहे हैं, तो कुछ थकेंगे? आपके तो पाँव ज़मीन पे नहीं लगेंगे। कौन है वो सदर है? और पता नहीं 5 साल के लिए होता होगा या 10 का, मुझे तो नहीं पता। अमूमन ऐसे ही है ना, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा। वो हस्ती जो बादशाहों को ज़मीन पे और ज़मीन वालों को ऊपर लाती है, अगर उसके रास्ते में आपको मुझे मेहनत करनी पड़ जाए तो क्या होगा? इससे दिल खुलते हैं। आज हम अल्लाह के रास्ते की कुछ भी मेहनत भी कर लेना, बस आप देखिए इल्म सीखना क्या है, इल्म सिखाना क्या है, दावत इल्लल्लाह, ये दीन है, ये है वो जगह जहाँ से ये दीन महफूज रहना है। खौफ ये है कि जिस तेज़ी से उम्मत इल्म से दूर हो रही है, हमारी नस्लों ने तो पता नहीं क्या कुछ करना है। बात का मकसद समझिएगा, अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह के कलाम, उसकी बातों से, और आपको फिर इस रास्ते में कोई दिल मुश्किल लगेंगे, तकलीफ आ गई, मुश्किल हो गई, एक दिन आना पड़ा मुश्किल, दूसरा दिन और मुश्किल, तीसरा और मुश्किल, नहीं, आप कहेंगे आप तो जमजम आए, आप तो बैठे, क्योंकि आप अल्लाह हैं, आप मालिकुल मुल्क हैं। तो इस रास्ते की सोबतें आसान होती हैं। आपको हैरत होती होगी, मुझे भी होती होगी, लेकिन नबी को और सहाबा को बिल्कुल हैरत नहीं होती थी कि जब दीन पे अमल की वजह से लोग उनको पत्थरों पे लिटाते थे, आखिर हजरत बिलाल का जिस्म था कि नहीं? दर्द होती थी, चोट होती थी, चोट लगती थी। क्यों अहद अहद कहते थे? क्योंकि उनको अल्लाह के नाम अलाहद का पता था। तो अगली बात लिखें कि जब ये ताल्लुक बनता है ना तो फिर इस्तकामत फिर दीन आती है। फिर किसी की धमकी या कोई फितने की हवा चलने से साथ ही हमारे दुपट्टे स्काफ अलमारियों में नहीं छुप जाते और दाढ़ियाँ नहीं कट जाती और मोहम्मद नाम नहीं ज़िबा हो जाता और अब्दुल्ला को हटा दो क्योंकि फितनों का दौर है। जिस रब ने बचाना है वो बड़ा है पकड़ने वालों से। फिर आप एक और चीज़ देखिए, हम किस पे माल खर्च करते हैं? जिससे मोहब्बत होती है। मसलन सोफ़ा सेट, मेरा ख्याल है 1000 यूरो का तो आता ही होगा इधर भी, 1000 यूरो का सोफ़ा सेट। नरम सोफ़े पे बैठने की मोहब्बत, आरामदेह, खूबसूरती, लग्जरियस लाइफ और जो भी मोहब्बतें हमें 1000 यूरो खर्च करने पे माइल कर देती हैं, ऐसी है ना। फिर इसी तरह आप देखिए घर में कोई चीज़ 10 यूरो की भी आती होगी, 10 और 1000 का बात नहीं है, बात उस चीज़ से मोहब्बत और उसकी ज़रूरत है, ऐसी है ना। जिस चीज़ की ज़रूरत है हम 1000 में भी खर्च कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो 100 में भी करते हैं, ज़रूरत नहीं होती तो 10 की भी नहीं लेते, ऐसी है ना। अब इस मिसाल को इधर रखिए, अल्लाह सुबहान तला के नामों पे गौर व फिक्र से सबसे पहले तो ये यकीन आता है कि जो मेरे पास है ना वो उसका दिया हुआ है। पहले सबक में सूरत बकरा में अल्लाह ने सिखाया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो हमने तुमको दिया उसमें से तुम खर्च करो, दिल खुल जाता है। अगला फ़ायदा, अल्लाह से जब ताल्लुक जुड़ता है उसके नामों की बुनियाद पे तो यकीन करें ऐसे लगता है कि जो हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखें, आप अक्सर जाते हैं किसी के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं, अपनी हैसियत से ले जाते हैं और आपको वहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आती है आप कहते हैं ये अच्छी तोहफा, अच्छी चीज़ है, मैं ले देता हूँ, मैं दे देता हूँ, ऐसे ही है ना। अब जब आप वहाँ पहुँचते हैं, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत आपके लिए करना, जब आप उनको बिछा बिछा देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? ये तोहफा तो बहुत छोटा है इनके लिए, ये इनके मुकाम का नहीं है। ऐसे ही है ना, फिर आप कुछ और करना चाहते हैं। अमूमन ऐसे ही होता है। क्या पता चला, जब आपके ऊपर उनकी अनायतें हुई, उन्होंने आपको कुछ अता किया, आपकी खिदमत की, तो आपको फिर क्या लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत कर रहे हैं, अब इसको ले जाइए रब की ज़ात पे, वो क्या करता है आपके मेरे लिए, मेरे आपके ऊपर उसकी अनायतें कितनी हैं। तो फिर उसके बाद ये जो हम अल्लाह के नाम पे 100, 50, 20, 25 खर्च करते हैं, ये कोई इसकी औकात है? मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारी तो नमाजें भी इस काबिल हैं कि उसके ऊपर फिर जाके इस्तग़फार के नफल पढ़ें। ये कोई नमाज है जो अल्लाह के लिए हम पढ़ते हैं, और ये कोई अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करते हैं जो करते हैं? तो बंदे को फिर शर्म आने लगती है। और इसी तरह से याद रखिए कि एक और फ़ायदा, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, अल्लाह करे मुझे भी नसीब हो और आपको भी, कि फ़राइज़ के बाद नवाफिल की रग़बत होती है। लेकिन अब फ़र्ज़ के हमारे बंद है, ये तो हिसाब है, चुकाना ही पड़ेगा, ना किया तो पकड़े गए। जैसे आपने किसी से उधार लिया हो तो वो तो चुकाना ही है, ठीक है, लेकिन नवाफिल के हैं तो तव्वो, खुशी से देना लेना। जब आप अपनी खुशी से एक्स्ट्रा करते हैं ना, वो असल चीज़ है। एक चीज़ है जो आपसे अगला पहले एक्सपेक्ट कर रहा होता है, पहले ही पता था आपने उसको ये करना है या देना है, लेकिन आप उससे एक्स्ट्रा कोई चीज़ देंगे तो ज़्यादा खुशी होगी ना, तो नवाफिल में दिल लगता है, और बंदे का दिन ब दिन फिर ताल्लुक़ बिल्ला इबादात की रोशनी में मजबूत हो जाता है। फिर एक बड़ी प्यारी बात है, शायद मेरा आपका दिल खुल जाए। हमारा ख्याल होता है कि फलां बहन भाई रिश्तेदार बड़ा अमीर है, हमारा गुमान होता है, अगर वो हम पे 4 पैसे लगा दे तो हमें अफसोस नहीं होता, हम कहते हैं कोई बात नहीं, इनके पास और भी बहुत है। इसका ऑपोजिट कोई गरीब रिश्तेदार है, आप कहते हैं इसके पास तो पता नहीं अगले वक्त की रोटी के भी पैसे हैं कि नहीं। अब वो आपके ऊपर कुछ पैसा खर्च करे तो आपको दुख होता है, आप कहते हैं किसी तरह से इनकी कमी को पूरा कर दें, जो इन्होंने हमारी खुशी पूरी की तो हम भी इनकी कर दें। इतनी बात तो सच समझ आ गई ना। अब क्या होता है, कोई कहता है मेरे पास बहुत है मांगो मुझसे क्या मांगते हो, कभी प्यारा कोई रिश्ता होता है ना, कहते खुद क्या दूँ तुम बोलो क्या चाहिए, ऐसे होता है ना। अब आप सोचिए, अल्लाह हर रात आसमाने दुनिया पे आता है, हल में मुस्तगफिर है, कोई बख्शिश मांगने वाला है, कोई बीमार जो सेहत मांगता है कोई दुखों में जिसको खुशियां चाहिए। अब जब वो रब और फिर आप उसको अल असमाउल हुस्ना के नाते से जानते हैं, तो दुआ मांगने में लज्जत आ जाती है। बंदा कहते और ही मांग लूँ, कुछ और ही मांग लूँ, इनको कौन सी कमी होनी है, वही मिसाल जो अभी दी इसीलिए दी है। बंदा कहते चलो कोई नहीं, इनकी याद ही मेरे पास रहेगी ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ चीज़ों का भूखा नहीं है ना किसी को, नहीं इतनी होती है, पकड़ पकड़ के इंसान फेंकता है, ऐसे ही है ना। अल्लाह से दुआ का ताल्लुक जमता है। आज ही रात को आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपने एक लिस्ट सुनी है अभी नामों की, सिर्फ चखी हैं अभी बातें, आज जाके ज़रा ये अपने लिखे हुए नोट्स खोल लें सामने, और एक एक नाम अल्लाह रहमान रहीम अलवदूद अलजब्बार, और एक एक के साथ मांगे, दे मुझे मेरे दुख दूर कर, और हर नाम पे आपका दिल फटेगा। अगर आप वाकई रिस्क मांग रहे हैं तो आपको आज सिर्फ नाम और राजिक और रज़ाक की याद रहेगा, और अगर आप अल्लाह से रहम मांग रहे हैं तो रहमान और रहीम अरहमुर राहिमीन ये नाम याद रहेंगे। दुआ में ज़िंदा ताल्लुक होता है। ये ऐसे जैसे भी आप फ़ोन पे अपनी माँ से अपनी बहन से बात करें तो वो बातें कौन सी ऊपरी ऊपरी होती हैं, हर बात सोच के बोलते हैं, समझ रहे होते हैं, ये नहीं कि बस सलाम अलैकुम आखिर ये हो गया वो खुदा हाफिज़, आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। दुआ में अल्लाह से आपका जो ताल्लुक बनना है ना, वो अल्लाह के नामों पे गौर व फिक्र से होना है। फिर एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब आप अल्लाह के बारे में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, बातें ही नहीं ख़त्म हो रही, तो क्या अल्लाह ताला को आप में इंटरेस्ट नहीं होगा? मैं आपको दुनियादारी के हिसाब से समझा रही हूँ, अल्लाह के नाते से नहीं बता रही, सीधी सी बात है, दिल को दिल से रहा, आप उठते बैठते अल्लाह के नाम, अल्लाह की बातें, अल्लाह को जानना, अल्लाह कौन, अल्लाह कैसा, अल्लाह किससे नाराज़, अल्लाह खुश, तो क्या अल्लाह ही छोड़ देगा आपको? फिर अल्लाह भी आप में दिलचस्पी लेगा, कहेगा फरिश्तों ये है मेरी वो बंदी, इसको पकड़ो, पहले इसके काम पूरे करो। वो दूसरे कहते हैं ना कि दूसरों के काम लोग करते हैं, तुम्हारे काम रब करता है। ये किसी की भी बात हो सकती है लेकिन ये सच है। मा कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह उसका बन जाता है। और आप देखेंगे कि ये वो हस्ती है, इसको छोड़कर मैं आप एक सेकंड एक सांस नहीं अलग ले सकते।
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.